सामवेद के ब्राह्मण, सामवेद के ब्राह्मण वर्तमान समय में सामवेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ उपलब्ध है उनमें तीन प्रधान हैं, तांड्य या पंचविश ब्राह्मण, षड्विश ब्राह्मण और जैमिनीय ब्राह्मण। तांड्य ब्राह्मण बहुत विशाल है, इसीलिए उसे महाब्राह्मण भी कहते हैं। 25 अध्यायों में विभक्त होने के कारण वह पंचविंश भी कहलाता है। शतपथ और तैत्रीय ब्राह्मणों के समान तांड्य ब्राह्मण में भी यागिक अनुष्ठानों का विशद रूप से प्रतिपादन किया गया है। ऐतिहासिक दृष्टि से भी यह ब्राह्मण बड़े महत्व का है। विशेषतया व्रात्य यज्ञ का विधान इस ग्रंथ में जिस ढंग से किया गया है उस द्वारा भारत के इतिहास के एक पहलू पर महत्वपूर्ण प्रकाश पड़ता है। आर्य मर्यादा का पालन न करने वाले व्रतविहीन लोगों को आर्यों के दायरे में आने के लिए विशेष यज्ञ किया जाता था और इस विधि से उन्हें व्रात्य बनाकर दोष मुक्त किया जाता था। जब दक्षिण तथा पूर्व दिशाओं में आर्यों का प्रसार हुआ तो वे अनेक ऐसी जातियों के संपर्क में आए जिनके आचार विचार आर्यों से भिन्न थे। इनके संपर्क से कतिपय आर्य वर्गों में भी आचार विचार के संबंध में शिथिलता आने लगी थी। व्रात्य यज्ञ द्वारा इनको दोष विहीन कर आर्य वर्ग में सम्मिलित किया जाता था। षड्विश ब्राह्मण पंचविश या तांड्य ब्राह्मण के परिशिष्ट रूप में है, पर उसे एक पृथक ब्राह्मण स्वीकार कर लिया गया है। इसे अद्भुत ब्राह्मण भी कहा जाता है क्योंकि इसमें भूकंप, अकाल आदि उत्पातों के शमन का भी विधान मिलता है। कतिपय अभिचार क्रियाएं भी इस ब्राह्मण में वर्णित हैं जो उस युग के धार्मिक विश्वासों में स्थान पा चुकी हैं। जैमिनीय ब्राह्मण शतपथ के समान ही अत्यंत महत्व का है। यह जहां विशाल काय है वहां साथ ही इसमें भी यागिक कर्मकांड का विस्तार के साथ निरूपण किया गया है। यागिक विधियों के अभिप्राय तथा प्रयोजन को स्पष्ट करने के लिए इस ब्राह्मण में बहुत से ऐसे आख्यान भी विद्यमान हैं इतिहास के लिए जिनका उपयोग किया जा सकता है। पंचविंश, षड्विंश और जैमिनीय ब्राह्मणों के अतिरिक्त कतिपय ऐसे अन्य ब्राह्मण ग्रंथ भी इस समय उपलब्ध हैं जिनका संबंध सामवेद के साथ है। ऐसा एक ब्राह्मण वंश ब्राह्मण है जिसमें सामवेद के ऋषियों की वंश परंपरा दी गई है। प्राचीन ऋषि वंशों के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए यह ब्राह्मण विशेष रूप से उपयोगी है। सामवेद का एक अन्य ब्राह्मण साम विधान है जिसमें विविध व्रतों यथा अभिचार क्रियाओं का वर्णन है। तांत्रिक क्रियाओं के लिए वेद मंत्र को कैसे प्रयुक्त किया जाता है यह भी इस ब्राह्मण में प्रतिपादित किया गया है। आरसे देवताध्याय और संहितोपनिषद आदि नामों से कतिपय अन्य ब्राह्मण ग्रंथ भी वर्तमान समय में उपलब्ध हैं जिनका संबंध सामवेद के साथ है। अथर्ववेद के ब्राह्मण, अथर्ववेद का केवल एक ही ब्राह्मण है वर्तमान समय में उपलब्ध हुआ है जिसे गोपथ कहते हैं। इसमें दो कांड हैं, पूर्व गोपथ और उत्तर गोपथ। पूर्व गोपथ में 5 अध्याय या प्रपाठक हैं और उत्तर गोपथ के अध्यायों की संख्या 6 है। अध्याय का प्रपाठक कंडिकाओं में विभक्त है जिनकी कुल संख्या 258 है। अग्निष्टोम, अश्वमेघ, संवत्सर, सत्र आदि के यागिक विधि विधानों के प्रतिपादन और उनके साथ संबंध रखने वाले आख्यानों के उल्लेख के अतिरिक्त इस ब्राह्मण में ओंकार तथा गायत्री की महिमा का भी विशद रूप से निरूपण किया गया है। ब्रह्मचारी को किन नियमों का पालन करना चाहिए और वेदों के अध्ययन में कितना समय लगाना चाहिए यह विषय भी इस ब्राह्मण में प्रतिपादित है। गोपथ ब्राह्मण की रचना ऋषि गोपथ द्वारा की गई थी जिनका नाम अथर्ववेद की ऋषि परंपरा में विद्यमान है। अनेक विद्वानों ने यह प्रतिपादित किया है कि गोपथ ब्राह्मण अन्य ब्राह्मण ग्रंथों के बहुत बाद बना था। पर्यास्क ने अपने निरुक्त में इस ब्राह्मण से अनेक उद्धरण दिए हैं जिससे इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता कि निरुक्त के समय तक इस ब्राह्मण की रचना हो चुकी थी। अन्य ब्राह्मणों से अर्वाचीन होने पर भी गोपत ब्राह्मण का समय 7वीं-8वीं सदी ईस्वी पूर्व के पश्चात नहीं रखा जा सकता। यहाँ हमने ब्राह्मण ग्रंथों का समान परिचय दिया है। उनमें जो विविध यागिक विधि विधान बकरम कांड प्रतिपादित हैं, भारत के धार्मिक इतिहास में उसका विशेष महत्व है। इन ब्राह्मणों की रचना के समय वैदिक धर्म का रूप यज्ञ प्रधान हो चुका था। भारत के इस धार्मिक विकास पर अगले एक अध्याय में विशद रूप से प्रकाश डाला जाएगा। तीसरा, आरण्यक ग्रंथ। क्योंकि वैदिक संहिता की प्रत्येक शाखा के अपने अपने पृथक ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद और सूत्र ग्रंथ होते थे, अतः आरण्यकों की संख्या भी सहस्त्र से अधिक होनी चाहिए, पर वर्तमान समय में केवल 8 आरण्यक ग्रंथ ही उपलब्ध हैं, जिनमें ऐत्रेय आरण्यक, सांख्यायन आरण्यक, तैत्रीय आरण्यक, बृहदारण्यक, जैमिनियोप निषादारण्यक और छांदोग्य आरण्यक प्रधान हैं। आरण्यक ग्रंथ ब्राह्मणों के परिशिष्टों के समान हैं। उनमें यागिक विधि विधानों व कर्मकांड का प्रतिपादन न कर आध्यात्मिक व दार्शनिक तत्वों का विवेचन किया गया है। भारत के प्राचीन चिंतकों ने मानव जीवन को 4 भागों या आश्रमों में विभक्त किया था, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए मनुष्य को जो धार्मिक अनुष्ठान करने होते थे, यज्ञ उनमें प्रधान थे। ब्राह्मण ग्रंथों में इन्हीं यागिक विधि विधानों का प्रतिपादन किया गया है, पर मनुष्य को अपना संपूर्ण जीवन गृहस्थ आश्रम में ही नहीं बिता देना चाहिए था। जब उसके पौत्र हो जाए और उसके बाल पकने लगे तो उसे गृहस्थ का त्याग कर अरण्य में चले जाना चाहिए और वहाँ अरण्यक आश्रम में निवास करते हुए अध्यात्म चिंतन में अपना समय बिताना चाहिए। यही अरण्यक आश्रमों में उस चिंतन का विकास हुआ जो आरण्यक ग्रंथों तथा उपनिषदों में संकलित है। ऐत्रेय आरण्यक के भाष में सायणाचार्य ने लिखा है, अरण्य एव पाठेत्वा दारण्य कमितीर्यते। इसका अर्थ यह है कि इन ग्रंथों को आरण्यक इस कारण कहा जाता है क्योंकि इनका पाठन पाठन अरण्य में ही होता है। गृहस्थ आश्रम से निकलकर प्राचीन भारतीय जब शहरों और ग्रामों से दूर जंगल में आश्रम बनाकर निवास करने लगते थे, तब उनके लिए वहाँ अध्यात्म तथा दार्शनिक तत्वों का अनुशीलन कर सकना सुगम होता था। वे अनुभव करते थे कि यागिक विधि विधान किसी अधिक गंभीर तथ्य या रहस्य को प्रकट करने के साधन मात्र हैं। गृहस्थ जीवन में वे जिस यागिक कर्मकांड का निष्ठापूर्वक अनुष्ठान करते रहे हैं, अब उसके वास्तविक तत्व व रहस्य को भी उन्हें समझना चाहिए। इसीलिए वानप्रस्थ आश्रम में आरण्यक ग्रंथों के पठन पाठन द्वारा यज्ञों की दार्शनिक व्याख्या तथा वास्तविक अभिप्राय से अवगत हुआ जाता था। इसीलिए आरण्यकों का एक अन्य नाम रहस्य भी था। निरुक्त की टीका में दुर्गाचार्य ने ऐत्रेय आरण्यक से एक उदाहरण दिया है और इसे ऐत्रेय के रहस्य ब्राह्मण से उद्धृत कहा है। आरण्यक ग्रंथ ब्राह्मणों के परिशिष्ट रूप में होते हुए भी उनसे भिन्न हैं, क्योंकि उनमें यागिक विधि विधानों का प्रतिपादन न कर यज्ञों की दार्शनिक व्याख्या की गई है, जिससे यागिक कर्मकांड का रहस्य समझ में आ जाता है। उपनिषदों से जो ब्रह्म ज्ञान एवं आध्यात्म चिंतन विकास की परम दशा को प्राप्त हुआ, उसको प्रारंभ आरण्यकों में दृष्टिगोचर होता है। वस्तुतः उपनिषदें आरण्यकों के अंतर्गत हैं या उनके परिशिष्टों के समान हैं। इन ग्रंथों से जहाँ प्राचीन भारत के धार्मिक विकास तथा दार्शनिक चिंतन का परिचय प्राप्त होता है, वहाँ उनमें ऐसी सामग्री भी विद्यमान है जिसका उपयोग प्राचीन इतिहास के लिए किया जा सकता है। तैत्रीय आरण्यक में कुरु, पांचाल, काशी, विदेह, मत्स्य आदि कितने ही जनपदों का उल्लेख है और उनके ऋषियों से संबद्ध कथानक भी उसमें दिए गए हैं। सुनह सेप और अहिल्या आदि के प्राचीन आख्यान भी उसमें विद्यमान है। यही बात बृहदारण्यक सदृश अन्य आरण्यकों के विषय में भी कही जा सकती है। बृहदारण्यक में कितने ही चक्रवर्ती राजाओं का उल्लेख है, जिन्होंने भारत के बड़े भाग को जीतकर अपने साम्राज्य के अंतर्गत किया था। वर्तमान समय में जो 8 अरण्यक उपलब्ध हैं उनमें से ऐत्रेय और सांख्यायन अरण्यकों का संबंध ऋग्वेद के साथ है। ऐत्रेय अरण्यक ऐत्रेय ब्राह्मण का ही परिशिष्ट है। इस अरण्यक के 5 भाग हैं जिन्हें भी अरण्यक कहा जाता है। प्रत्येक भाग में 1 से 7 तक अध्याय हैं। ऐत्रेय उपनिषद इसी अरण्यक का अन्यतम अंग है। ऋग्वेद का दूसरा अरण्यक सांख्यायन है, जिसका एक भाग कौशितकी उपनिषद के रूप में है। कृष्ण यजुर्वेद का अरण्यक ऐत्रेय है, जो 10 प्रपाठकों या परिच्छेदों में विभक्त है। प्रपाठकों के उपविभाग अनुवाक्य हैं, जिनकी संख्या इस अरण्यक के विविध संस्करणों में एक समान नहीं है। ऐत्रेय उपनिषद इसी अरण्यक का अंग है। ऐत्रेय अरण्यक के 7वें 8वें और 9वें प्रपाठकों से ही ऐत्रेय उपनिषद का निर्माण हुआ है और 10वें प्रपाठक से नारायणी उपनिषद का शुक्ल यजुर्वेद का अरण्य बृहदारण्यक है, जो उसके ब्राह्मण शतपथ ब्राह्मण का ही एक भाग है। बृहदारण्यक उपनिषद भी इसी अरण्यक के अंतर्गत है। सामवेद का अरण्यक जैमिनियोपनिषद निषदारण्यक है, जिसे तवलकार अरण्यक भी कहते हैं। केन उपनिषद इसी अरण्यक का अंग है। छांदोग्य अरण्यक का संबंध भी सामवेद से है। अथर्ववेद का कोई अरण्यक इस समय उपलब्ध नहीं है। चौथा उपनिषद। प्राचीन भारतीय आर्यों में धर्म प्राचीन भारतीय आर्यों के धर्म में यज्ञों की प्रधानता थी और वे यागिक विधि विधानों तथा कर्मकांड को बहुत महत्व देते थे। इसीलिए यागिक अनुष्ठान के प्रतिपादन और उनमें वेद मंत्रों के विनियोग को प्रदर्शित करने के लिए उन्होंने ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की थी। पर वैदिक ऋषि आध्यात्मिक दार्शनिक एवं परालौकिक विषयों का भी चिंतन किया करते थे। आत्मा क्या है, सृष्टि की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, सृष्टि के मूल तत्व कौन से हैं, सृष्टि का कर्ता व नियामक कौन है, जड़ प्रकृति से भिन्न जो चेतन सत्ता है उसका क्या स्वरूप है, इस प्रकार के प्रश्नों पर भी वे गंभीरता से विचार किया करते थे। वेदों के अनेक सूक्तों में इन्हीं विषयों का निरूपण किया गया है। उपनिषदों में इन्हीं आध्यात्मिक दार्शनिक एवं परालौकिक प्रश्नों का विशद रूप से विवेचन है। जिन चिंतकों व ऋषियों में उपनिषदों की रचना की वे प्रायः आरण्यक आश्रमों में निवास किया करते थे और सांसारिक समस्याओं से निश्चिंत होकर गंभीर चिंतनों से व्यापृत रहा करते थे। जैसा कि आरण्यक ग्रंथों का परिचय देते हुए लिखा जा चुका है, अनेक उपनिषद आरण्यकों की ही अंग है। यद्यपि ऐसी उपनिषदों की भी सत्ता है जिनका संबंध किसी आरण्यक के साथ नहीं है। आरण्यक आश्रमों में निवास करते हुए ऋषियों ने जिन उपनिषदों की रचना की उनकी संख्या 200 से भी ऊपर है। पर इन सब का महत्व एक समान नहीं है और न ही सबको प्रमाण स्वरूप स्वीकार किया जाता है। मुक्तिकोपनिषद के अनुसार उपनिषदों की संख्या 108 है, जिनमें से 10 का संबंध ऋग्वेद से है, 19 का शुक्ल यजुर्वेद से और 12 का कृष्ण यजुर्वेद से, 16 का संबंध सामवेद से और 31 का संबंध अथर्ववेद के साथ है। पर मुख्य एवं प्रमाणिक उपनिषदें 10 मानी जाती है, जिनके नाम निम्नलिखित है। इस केन कट प्रश्न मुंडक मांडुक्य तैत्रीय ऐत्रेय छांदोग्य और बृहदारण्यक। शंकराचार्य ने इन 10 उपनिषदों पर ही अपना भाष्य लिखा है। आधुनिक युग में महर्षि दयानंद ने भी इन्हीं को की प्रामाणिकता स्वीकार की है। इनके अतिरिक्त कौशितकी और श्वेता स्वर उपनिषदों को भी महत्वपूर्ण माना जाता है। शंकराचार्य ने यद्यपि इन पर भाष्य नहीं लिखा, पर ब्रह्म सूत्र भाष में इनसे भी अनेक उदाहरण दिए हैं। ये 12 उपनिषदें न केवल महत्वपूर्ण तथा प्रमाणिक हैं अपितु प्राचीन भी हैं। अन्य उपनिषदों को बाद के समय का माना जाता है। अध्यात्म तथा परलौकिक विषयों के संबंध में इन अन्य उपनिषदों में जो तथ्य प्रतिपादित किए गए हैं महत्व उनका भी कम नहीं है। न केवल भारत के अपितु विदेशी व विधर्मी विद्वान भी इन्हें अत्यंत आदर की दृष्टि से देखते रहे हैं। यही कारण है कि 17वीं सदी के मध्य भाग में मुगल बादशाह शाहजहां के पुत्र दारा शिकोह ने 50 के लगभग उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद कराया था। उपनिषदें गद्य और पद्य दोनों में हैं। प्रश्न, मांडुक्य, केन, ऐत्रीय, तैत्रीय, छांदोग्य, बृहदारण्यक और कौशितकी उपनिषदें प्रधानतया गद्य में हैं और इस कठ तथा श्वेता श्वेतर उपनिषदों की रचना पद्य में है। जैसे कि पहले लिखा जा चुका है, अनेक उपनिषदें वैदिक संहिताओं, ब्राह्मणों एवं आरण्यकों के अंग रूप में हैं। इस उपनिषद यजुर्वेद संहिता का अंतिम या 40वां अध्याय है। इससे यजुर्वेद का ही एक अंश माना जाना चाहिए। बृहदारण्यक उपनिषद इसी नाम बृहदारण्यक के आरण्यक का अन्यतम अंश है, जो स्वतः शतपथ ब्राह्मण का एक भाग है। छांदोग्य उपनिषद सामवेद के संहितोपनिषद ब्राह्मण का एक भाग है और तैत्रीय उपनिषद तैत्रीय आरण्यक के अंतर्गत है। इस प्रकार ऐत्रीय उपनिषद भी इसी नाम के आरण्यक ऐत्रीय आरण्यक का एक भाग है। मुंडक, मांडुक्य और प्रश्न उपनिषदों का संबंध अथर्ववेद से माना जाता है। ये तीनों उपनिषदें किसी आरण्यक का अंग नहीं है। अथर्ववेद का कोई व्यापक अभी उपलब्ध नहीं अथर्ववेद का कोई आरण्यक अभी उपलब्ध नहीं हुआ है। उपनिषदों का विषय यागिक कर्मकांड से सर्वथा भिन्न है। उनमें तो इस विचार का भी आभास मिलता है कि यज्ञों का कोई विशेष लाभ नहीं है। अध्यात्म चिंतन तथा तत्व ज्ञान को ही उनमें अधिक महत्व दिया गया है। मुंडक उपनिषद में तो यहाँ तक कह दिया गया है कि यज्ञ ऐसी नौकाओं के समान है जिन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। जो मूर्ख लोग श्रेय समझकर उनको अपनाते हैं या उनका अभिनंदन करते हैं, वे पुनः पुनः वृद्धावस्था तथा मृत्यु को प्राप्त होते हैं, अर्थात जन्म मरण के चक्कर में पड़े रहते हैं। उपनिषदों में जिस तत्वज्ञान का निरूपण किया गया है, उस पर हम प्राचीन भारत की धार्मिक दशा पर विचार करते हुए प्रकाश डालेंगे, पर यहाँ उसकी कुछ मुख्य शिक्षाओं का निर्देश कर देना उपयोगी होगा। ईशो उपनिषद में ईश्वर के स्वरूप को इस प्रकार प्रकट किया गया है कि वह दूर भी है और समीप भी है, वह चलता भी है और नहीं भी चलता, वह सबके अंदर भी है और सबके बाहर भी है। यह संपूर्ण ईश्वर द्वारा व्याप्त है, पर ईश्वर के ज्ञान के साथ साथ मनुष्य को कर्म में भी तत्पर रहना चाहिए। ब्रह्म ज्ञान में लीन होकर मनुष्य को कर्म से विमुख नहीं होना चाहिए, अपितु कर्म करते हुए ही उसे 100 वर्ष तक जीवित रहने की इच्छा करनी चाहिए। निष्काम कर्म के जिस सिद्धांत को गीता में अत्यधिक महत्व दिया गया है उसका प्रतिपादन सबसे पूर्व ईशो उपनिषद द्वारा ही किया गया था। यह उपनिषद कर्म का परित्याग करने का उपदेश न देकर जीवन पर्यंत निष्काम भाव से कर्म करने का उपदेश देती है। कठ उपनिषद में आचार्य यम द्वारा नचिकेता को ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया गया है। आत्मा के विकार के संबंध में उपनिषद का कथन है कि न इस आत्मा का कभी जन्म होता है और न का इसकी कभी मृत्यु होती है। यह अजन्मा, नित्य और शाश्वत है। शरीर के मर जाने पर आत्मा नहीं मर जाती। परमात्मा के विषय में या आचार्य यम का यह कथन है कि सारे वेद जिस पद का प्रतिपादन करते हैं, जिसे लक्ष्य में रखकर सब प्रकार के तप किए जाते हैं, जिसका ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया जाता है, उस पद को तुम्हें संक्षेप में बताता हूँ। वह पद ओम ही है, अर्थात ओम है ही है। इस परमात्मा की प्राप्ति का उपाय क्या है? परमात्मा को न प्रवचनों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, न बहुश्रुत होकर और न अत्यधिक बुद्धि का प्रयोग कर। स्वयं भगवान जिसका वरण कर ले वही उसे प्राप्त कर सकता है। उसी के सम्मुख परमात्मा का स्वरूप स्पष्ट हो पाता है। प्रश्नोपनिषद में ऋषि पिपलाद और 6 ऋषियों के संवाद संकलित हैं। सुकेशा, सत्यकाम, सौर्यायनी, आश्वालायन, भार्गव और कबंधी नाम के 6 ऋषि पिपलाद के पास गए और उनसे अध्यात्म विद्या संबंधी अनेक प्रश्न पूछे थे। प्रश्नोपनिषद में ये प्रश्न और पिपलाद द्वारा दिए गए उनके उत्तर अत्यंत सुंदर रूप से संग्रहित हैं। ब्रह्म ज्ञान का जो निचोड़ ऋषि पिपलाद द्वारा प्रस्तुत किया गया है वह यह है कि प्राण, पंच महाभूत, मन, इंद्रिय, अन्न, वीर्य, तप, कर्म, मंत्र, लोक और नाम, ये सब ब्रह्म से उत्पन्न होकर अंत में पुनः उसी प्रकार ब्रह्म में लीन हो जाते हैं जैसे कि नदियां समुद्र में लीन हो जाती है। समुद्र में लीन होकर नदियों का न नाम ही रहता है और न रूप ही। वे समुद्र में लीन होकर उसी के साथ एकाकार हो जाती है। उसी प्रकार मन, इंद्रिय आदि परम पुरुष या ब्रह्म में लीन होकर अपने नाम रूप या व्यक्तित्व का परित्याग कर देती है। मुंडक उपनिषद में कर्मकांड की हीनता प्रतिपादित कर यज्ञों की को ऐसी नौका के समान कहा गया है जो अदृढ़ है और जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। फिर ब्रह्म की प्राप्ति का साधन क्या है? मुंडक उपनिषद के अनुसार ब्रह्म ज्ञान के लिए मनुष्य को गुरु का सहारा चाहिए, ऐसे गुरु का जो स्वयं ब्रह्मनिष्ठ हो। पर सब कोई के लिए यह संभव नहीं है कि वे गुरु से भी ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कर सके, क्योंकि परमात्मा का ज्ञान बलहीन व्यक्तियों द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। उसके लिए ब्रह्म विद्या का अधिकारी होना आवश्यक है, जो अभ्यास और तप द्वारा ही संभव है। गुरु ब्रह्म विद्या का उपदेश उसी को देते हैं जिसने तप और व्रतों द्वारा अपने को सबल एवं योग या अधिकारी बना लिया हो, और इस उपदेश को प्राप्त कर मनुष्य जब पर ब्रह्म को जान लेता है तो उसके सब संशय मिट जाते हैं, हृदय की गांठ खुल जाती है और उसे कर्म करने की आवश्यकता नहीं रह जाती, उसके कर्म स्वयं ही क्षीण हो जाते हैं। ब्रह्म का गुरु द्वारा जिस रूप में मुंडक उपनिषद में प्रतिपादन किया गया है वह इस प्रकार है। ब्रह्म अमृत है, वह सामने की ओर है, पीछे की ओर है, दक्षिण में है, उत्तर में है, नीचे है, ऊपर है, वह संपूर्ण विश्व में सर्वत्र है, यह सब विश्व ब्रह्म ही है। मांडुक्य उपनिषद में ब्रह्म को के साकार और निराकार दोनों रूपों का निरूपण किया गया है। ब्रह्म निर्गुण भी है और सगुण भी, और वह अपने को अनेक रूपों में प्रकट करता है। बाद में वेदांत दर्शन में ब्रह्म और उसके माया व छिन्न रूप का जो तात्विक विवेचन किया गया उसका मूल इस उपनिषद में विद्यमान है। ऐत्रेय उपनिषद में सृष्टि की उत्पत्ति के संबंध में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि प्रारंभ में केवल आत्मा की ही सत्ता थी, अन्य कोई भी सत्ता उस समय नहीं थी। उस आत्मा ने यह इच्छा की कि लोक या सृष्टि को उत्पन्न करूं। परिणाम यह हुआ कि उस आत्मा के संकल्प से प्राण, आदित्य, दिशाएं, मन, अग्नि, औषधि, जल आदि की उत्पत्ति हुई और इस विश्व का विकास हुआ। सृष्टि की उत्पत्ति एक आत्मा या ब्रह्म से ही हुई है। इस दार्शनिक सिद्धांत का स्पष्ट रूप से प्रतिपादन इस उपनिषद में विद्यमान है। केन उपनिषद में ब्रह्म के स्वरूप का प्रतिपादन करने के लिए गुरु शिष्य के संवाद द्वारा प्रश्नोत्तर शैली का आश्रय लिया गया है। साथ ही उमा और हेमवती के आख्यान द्वारा यह प्रकट किया गया है कि ब्रह्म सर्वशक्तिमान है और उसकी तुलना में अग्नि, वायु, इंद्र आदि देवताओं की शक्ति बहुत कम है। तैत्तरीय उपनिषद में जहाँ ब्रह्म के स्वरूप का प्रतिपादन है, वहाँ साथ ही गुरु और शिष्य के पारस्परिक व्यवहार में जिन आदर्शों को सन्मुख रखना चाहिए, उनका भी निर्देश किया गया है। शिक्षा की समाप्ति पर आचार्य द्वारा अपने शिष्यों स्नातकों को जो उपदेश दिया जाता था, इस उपनिषद में अत्यंत सुंदर एवं विशद रूप से उसका उल्लेख है। सदा सत्य बोलो, सदा धर्म का आचरण करो, स्वाध्याय से कभी प्रमाद न करो आदि का उपदेश देकर आचार्य द्वारा यह भी कहा गया है कि हमारे जो आचरण वक्रम श्रेष्ठ हो, तुम्हें उन्हीं का अनुकरण करना है, दूसरों का नहीं। यदि तुम्हें कभी इस संबंध में संदेह उत्पन्न हो कि कौन से कार्य करणीय हैं और हैं या कौन सा आचरण श्रेष्ठ है, तो यह देखोगे कि बड़े श्रेष्ठ लोग क्या कुछ करते हैं और कौन से आचरणों को अपनाते हैं। शिष्यों को दिया गया है यह उपदेश आदर्श तथा पूर्ण है। वर्तमान समय में भारत के बहुत से विश्वविद्यालयों ने इसी को दीक्षांत भाषण के लिए अपना लिया है। ब्रह्म के स्वरूप के संबंध में तैत्तरीय उपनिषद का यह कथन बड़े महत्व का है कि मन के साथ न पहुंच सकने के कारण जहां से वाणी वापस लौट आती है, वह ब्रह्म आनंद स्वरूप है। जब मनुष्य उसको जान लेता है तो उसे किसी प्रकार का कोई भय नहीं रह जाता। सामवेद के साथ संबंध छांदोग्य उपनिषद का ब्रह्म ज्ञान के लिए अत्याधिक महत्व है। सर्व खलिविदम ब्रह्म अद्वैतवाद का मूलभूत सिद्धांत है। यह स्वयं ब्रह्म ही है, ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ नहीं है। वेदांत के इस सिद्धांत का सबसे पूर्व स्पष्ट रूप से उल्लेख इसी उपनिषद में मिलता है। नारद और सनत कुमार के कैराज अश्वपति, सत्यकाम, जावाली, घोर आंगिरस और देवकी पुत्र कृष्ण आदि के आख्यानों द्वारा इस उपनिषद में अध्यात्म ज्ञान और ब्रह्म तत्व का अत्यंत उत्कृष्ट रूप से निरूपण किया गया है। बृहदारण्यक उपनिषद अन्य सब उपनिषदों की अपेक्षा अधिक विशाल है। इसके प्रधान प्रवक्ता महर्षि याज्ञवल्क्य हैं, जिनके अनेक संवाद इस उपनिषद में संकलित है। विदेह के राजा जनक की राजसभा में कितने ही ब्रह्मवादी विद्वानों को याज्ञवल्क्य ने शास्त्रास्त्र में प्रास्त कर स्वयं ब्रह्म विद्या का प्रतिपादन किया। इस महर्षि की दो पत्नियां थीं, मैत्रीय और कात्यायनी। इनसे विदा लेकर और अपनी सब संपत्ति इन्हें प्रदान कर याज्ञवल्क्य आरण्यक आश्रम में प्रवेश करते हैं और विविध अवसरों पर इन विदुषी महिलाओं से उनके जो संवाद होते हैं, वे भी इस उपनिषद में विद्यमान हैं। मैत्रीय को उपदेश देते हुए आत्मा के ज्ञान के महत्व को इस प्रकार प्रकट किया गया है। आत्मा ही द्रष्टव्य है, आत्मा ही श्रोतव्य है, आत्मा का ही मनन करना चाहिए, आत्मा का ही निधि ध्यासन करना चाहिए। हे मैत्रीय, आत्मा के ही दर्शन, श्रवण और सम्यक ज्ञान द्वारा सब कुछ विदित हो जाता है। निसंदेह भारतीय चिंतकों द्वारा जिस अध्यात्म विद्या तथा ब्रह्म ज्ञान का निरूपण किया गया था उपनिषदों में, वह अत्यंत आकर्षक एवं पठनीय भाषा में संकलित है। सत्यमेव जयते नानृतम्, सदा सत्य की ही विजय होती है, झूठ की नहीं। और नायमात्मा बलहीनेन लभ्य, बलहीन व्यक्ति परमात्मा को कभी प्राप्त नहीं कर सकते, ऐसे कितने ही वाक उपनिषदों में विद्यमान है जो मनुष्यों के व्यक्तिक तथा सामाजिक जीवन के लिए भी प्रकाश स्तंभ का कार्य करते हैं। पांचवा अनुकर्मणी ग्रंथ। प्राचीन समय में जब मुद्रणालयों की सुविधा नहीं थी, साहित्य का को या तो कंठस्थ कर सुरक्षित रखा जाता था या हस्तलिखित रूप से। दोनों में यह आशंका बनी रहती थी कि कहीं ग्रंथ के शुद्ध पाठ में अंतर न पड़ जाए। वैदिक संहिताओं का आर्य जाति की दृष्टि में विशेष महत्व था, अतः उनके पाठ में अशुद्धियां न होने पाए, इसके लिए विशेष उद्योग किया गया। इसी परियोजना से उन ग्रंथों का निर्माण हुआ जिन्हें अनुक्रमणी कहा जाता है। ये ग्रंथ न वैदिक साहित्य के अंतर्गत हैं और न वेदांगों के, पर क्योंकि वेदों के शुद्ध पाठ की सुरक्षा के लिए इनका बहुत उपयोग है, अतः इनके संबंध में कुछ परिचय देना उपयोगी होगा। अनुक्रमणी ग्रंथों में वेदों के ऋषियों, देवताओं, छंदों और विविध विभागों, सूक्त, मंत्र आदि की सूचियां प्रस्तुत की गई है। इन ग्रंथों के रचयिताओं में शौनक और कात्यायन प्रधान हैं। शौनक ने ऋग्वेद की शुद्धता की रक्षा के निमित्त 10 ग्रंथों की रचना की थी। आर्षानुक्रमणी, छंदोनुक्रमणी, देवतानुक्रमणी, अनुवादक अनुक्रमणी, सूक्तानुक्रमणी, ऋग्विधान, पाद विधान, ब्रीह देवता, प्रातिशाख्य और शौनक स्मृति, ये सब ग्रंथ वर्तमान समय में उपलब्ध हैं। इनमें से पहले 5 में ऋग्वेद के ऋषियों, छंदों, देवताओं, अनुवाकों और सूक्तों की सूचियां दी गई है। ऋग्वेद में विशेष प्रयोजन से मंत्रों का प्रयोग का विवरण है। ब्रीह देवता में न केवल ऋग्वेद के देवताओं का परिगणन है, अपितु साथ ही उनके साथ संबंध आख्यान भी इस ग्रंथ में दिए गए हैं। कात्यायन द्वारा विरचित सर्वानुक्रमणी बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें ऋग्वेद के प्रत्येक सूक्त के प्रथम पद, उस सूक्त के अंतर्गत ऋचाओं की संख्या, सूक्त के ऋषि का नाम तथा गोत्र, सूक्तों तथा उनके अंतर्गत मंत्रों के देवताओं का निर्देश और मंत्रों के छंदों का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद के अतिरिक्त अन्य वेदों पर भी कात्यायन ने अनुक्रमणियाँ लिखी थी, जिनमें से अन्यतम शुक्ल यजुर् सर्वानुक्रम सूत्र विशेष महत्व का ग्रंथ है। इसमें माध्यनिंदिन शाखा की यजुर्वेद संहिता के ऋषियों, देवताओं तथा छंदों का विशद रूप से वर्णन किया गया है। अथर्ववेद के साथ संबंध रखने वाले अनुक्रमणी ग्रंथ बृहत् सर्वानुक्रमणी है, जिसमें अथर्ववेद के प्रत्येक कांड के सूक्तों के मंत्रों, छंदों, ऋषियों तथा देवताओं का पूरा पूरा विवरण दिया गया है। सामवेद से संबंध भी अनेक ऐसे ग्रंथ वर्तमान समय में उपलब्ध हैं जिनका स्वरूप अनुक्रमणियों के सदृश है। यद्यपि अनुक्रमणी ग्रंथों की रचना ब्राह्मणों, आरण्यकों और उपनिषदों के समय से बहुत पीछे हुई थी और उन्हें वैदिक साहित्य के अंतर्गत नहीं माना जाता, पर इसमें संदेह नहीं कि वेदों की शुद्धता को बनाए रखने में उनका बहुत उपयोग था और इसीलिए उन पर कितने ही भाष्यों तथा टीकाओं की भी रचना की गई थी। समाप्त।